मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। एफआईएस के आज 1 अप्रैल 2020 है और के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी जयंत सोडा का जो ब्यावर राजस्थान से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवम्बर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं नाम एक बार दोस्तों रिपीट करना चाहूंगा, जयंत सोडा जो ब्यावर राजस्थान से हैं। आपके मन में यह बात आएगी कि मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं। रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक ऐसे समय में जहां मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एक तरह के अवसाद की मानसिकता से ग्रसित हैं, भ्रमित हैं, वहां जयंत ने इस बात का फैसला किया कि नहीं, मुझे क्या करना है। और केवल यही नहीं फैसला किया कि मुझे क्या करना है, बल्कि इसे कैसे करना है इसके बारे में भी निर्णय लेते हुए उसे व्यवहार रूप दिया। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे इस मुद्दे पर थोड़ी बात करने जा रहा हूं कि एक जो प्रशासक होता है उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। और यह बात मैं बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर करूंगा, जो कुछ भी अभी आप अपने आसपास देख रहे हैं उन्हीं को आधार बनाकर। लेकिन इससे पहले आइए कुछ जो दूसरी खबरें हैं थोड़ा सा उन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस से ग्रसित है। लोग कोरोना वायरस के बारे में अपने अपने ढंग से रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने के लिए जो तरीके अपनाए जाने चाहिए उन तरीकों को अपना रहे हैं। बीच बीच में खबरें आती हैं कि ऐसा इसका टीका ढूंढ लिया गया है, फिर वो होता है कि अभी परीक्षण बाकी है। लेकिन दुनिया चुप नहीं बैठी है, इस चुनौती का सामना करने के लिए डटकर खड़ी है और लगी हुई भी है। यहां हम एक दो चीजों को खासकर देखेंगे। पहला है कोरोना वायरस के भारत में संक्रमण की स्थिति। आप देखिए कि भारत में जो घनत्व है, जन घनत्व है ना, डेंसिटी ऑफ द पीपल, वो बहुत ज्यादा है। देखिए, हम भले ये बात कहते हैं कि चीन की आबादी हमसे ज्यादा, हालांकि कोई बहुत ज्यादा आबादी ज्यादा नहीं है, अगर 20 करोड़ आबादी ज्यादा है तो, लेकिन जो घनत्व है वो हमारे यहां चीन से 3 गुना ज्यादा है। तो घनत्व तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। मान लीजिए हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं, चीन के साथ यही है। लेकिन हमारे पास जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो घनत्व तो बहुत अधिक है, चीन से 3 गुना। तो इसीलिए जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम चीजों को लॉजिकल तरीके से देख सकें। दूसरी बात कि चूंकि हमारे यहां घनत्व ज्यादा है तो थोड़ी सी चुनौतियां भी ज्यादा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है जिसके बारे में बहुत फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि भारत में गर्मी की शुरुआत हो गई, समर आ चुका है और अब और तेज गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत से साइंटिस्ट का यह मानना है कि जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो ये जो वायरस है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इसके लिए बकायदे वो अपने अपने ढंग से रिसर्च के डेटा भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि उन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप है जो ठंडे प्रदेश, खासकर यूरोप को देखिए, है ना, एशिया और इधर है लेकिन काफी कम है। तो यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे अप्रैल से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे डेफिनेटली इसका जो प्रकोप है वो बेहद कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस संदर्भ में है। जो दूसरी बात है, लगातार इसको लेकर के अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है कि इस कोरोना का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कि अर्थव्यवस्था को लेकर के वास्तव में पूरी दुनिया चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है। और यह माना जा रहा है कि इस कोरोना वायरस से तो चलिए एक सीमा के बाद हम निपट लेंगे, लेकिन इससे जो अर्थव्यवस्था डैमेज होगी, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा वह बहुत ज्यादा होगा। और यहां तक घोषणा की जा रही है कि कहीं हम एक जबरदस्त किस्म की मंदी में ना फंस जाएं। जब हम अर्थव्यवस्था के डैमेज होने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, आप देखिए कि फैक्ट्रीज बंद हैं, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, उत्पादन हो नहीं रहा है। तो जब आर्थिक गतिविधियां ही बंद हैं तो अर्थव्यवस्था में जान आएगी कहां से। फिर कोरोना वायरस खत्म होगा और इसके बाद फिर से सारी चीजें रिज्यूम होंगी और फिर से शुरुआत होने के बाद चीजों में गति आएगी, गति आने के बाद फिर चीजें व्यवस्थित होंगी, तो उसमें भी एक लंबा वक्त लगेगा। तो डेफिनेटली इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि भारत और चीन पर इसका जो दुष्प्रभाव होगा वह अपेक्षाकृत कम होगा। उसका कारण यह है कि हम ऑलरेडी 5-6% जीडीपी की ग्रोथ ले रहे हैं, वो घट करके 2-2.5% अभी तक कहा जा रहा है कि शायद 2-2.5% तक पहुंच जाएगा, यानी कि हम ग्रोथ तो करेंगे लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये भारत के लिए बहुत राहत की बात है, और भारत के लिए राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादातर विदेशी अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं है, यानी कि हम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से ही आय अर्जित करते हैं, हमारे पास अपना प्रोडक्शन है, अपना मार्केट है, वही हमारी अर्थव्यवस्था की सच पूछे तो अभी तक तो कम से कम रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए अर्थव्यवस्था भारत की कमोवेश आप यूं कह लीजिए कि थोड़ी ठीक ठाक ही रहेगी। तो दोस्तों, इस संदर्भ में जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने जानने को मिलता है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें कि भारत और कोरोना और अर्थव्यवस्था, इस पर थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब मैं आज के मुख्य विषय के तहत एक प्रशासक की जो मानसिकता है वो क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप यही बनने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर मैंने क्या महसूस किया है कि जब लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या जब पूछा जाता है कि आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, और ये गलत नहीं है क्योंकि ये ऐसी सर्विस है जहां जाकर के सही मायने में आप कुछ कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके कि ठीक है बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, कमियां हैं, कुछ दबाव होते हैं, कुछ तनाव होते हैं, फिर भी करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो सिविल सर्विस है वो बेसिकली ज्ञान की ही परीक्षा नहीं है। मैंने देखिए ही शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान तो आवश्यक है, उसके बिना तो आप परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, और सच पूछिए तो जब आप बन जाएंगे तब भी ज्ञान की आवश्यकता है। आपकी मानसिकता को ही ये जज कर रही है, जो परीक्षा भी है वो आपकी मानसिकता को जज कर रही है, आपकी मानसिकता किस तरीके की है, किस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हैं, नए तरीके से आप रास्ते निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसी तरह से सिलेबस रखे गए हैं और उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी तरह से उनका मूल्यांकन भी होता है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर आप पूरा सिलेबस रट जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस के ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जो यूपीएससी के रिक्वायरमेंट है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मानसिकता की तलाश कर रहे हैं। मानसिकता की तलाश क्यों कर रहे हैं, अभी के स्थिति में आपको इसका जबरदस्त प्रमाण देखने को मिल जाएगा। आप देखिए कि क्यों कर रहे हैं। सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है, बंदी कर दी गई है, लेकिन उसी के तहत अगर आप सिविल सर्विस के थोड़े से ध्यान से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकार का एक आदेश पढ़ने को मिला होगा, और वो आदेश ये है कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर और एसपी इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि वो देखें कि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल हो, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप सोच करके देखिए, एक एक व्यक्ति इसको लेकर के परेशान है, उसमें उत्तेजना है, भय भी है, और उन सबको नियंत्रित करना है, और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है जो आईएएस ऑफिसर है और जो आईपीएस ऑफिसर है। सोच करके देखिए, अब आप बताइए, उसके सामने भी डर है, जितने भी लोग अभी प्रशासन से जुड़े हुए हैं और दूसरे जो हम सबको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, कोई बिजली में काम कर रहा है, कोई पानी में काम कर रहा है, आप देखिए कि सब हो रहे हैं, शहरों की आपके सफाइयां भी हो रही हैं, सब लोग हैं, ये सब लोग प्रणम्य हैं हमारे लिए, चाहे वो अफसर हो या सामान्य किस्म का सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, इन्हें हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को खतरे में डाले हुए हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं तो क्या वह सामान्य मानसिकता में संभव है? आप सोच करके देखिए कि उसके लिए कितने जबरदस्त किस्म के मानसिक ठोसपन की जरूरत होती है, जबरदस्त किस्म का मानसिक ठोसपन जो जरा भी विचलित नहीं हो रहा है, और मानसिक ठोसपन ऐसा कि आपको हर क्षण निर्णय लेने हैं और इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं कि उनका सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि आपके निर्णय से आपके जिले के एक एक नागरिक का जीवन जुड़ा हुआ है, उनकी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक गलत निर्णय लेते हैं तो पता नहीं उसके क्या दुष्परिणाम हो जाएंगे। आपने अखबारों में यह भी पढ़ा होगा कि जो इस तरह यहां अपनी सक्षमता को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बकायदे उनके पदों से हटा दिया जा रहा है। नौकरी से तो नहीं निकाल सकते हैं ना, वो एक कानून की बात होती है, लेकिन उन्हें दूसरी जगह भेजा जा रहा है, वहां और सक्षम अधिकारियों को भेजा जा रहा है जो इसे हैंडल कर सके। तो दोस्तों, इसे हैंडल करने के लिए किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताबी ज्ञान आपको मदद करेगी, नो डाउट, या बाद में समझेंगे कि किताबी ज्ञान इसमें क्यों मदद करती है। क्योंकि जब हम मानसिक दृढ़ता की बात करते हैं, या ये हम ये सोचते हैं कि हम कैसे सही डिसीजन लें, तो आप कैसे सही डिसीजन लेंगे? आखिर में आपके दिमाग में कुछ तथ्य तो होने चाहिए, कुछ बेस तो होना चाहिए। और ये जो हमारा किताबी ज्ञान है, या किताबी का जो एक आलोचनात्मक और समीक्षात्मक ज्ञान है, क्योंकि हम सभी सीधे किताबों को पढ़ते नहीं हैं, यहां उससे बात नहीं बनेगी, हम उसे आलोचनात्मक समीक्षात्मक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, तो किताबों की जो समझ है, ये कहना चाहिए, किताबों की जो समझ है वो हमें निर्णय लेने में मदद करता है, हमें दिमागी ताकत देता है। और वो ही उसी दिमागी ताकत के दम पर हम सही मायने में हमारी जो प्रशासक की ये जो दायित्व हैं, हमारे जो धर्म हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनका सही तरीके से हम निर्वाह कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस बात की हमें कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे मानसिक रूप से अपने आप को बहुत सुदृढ़ बनाना है, कोई कमजोरी दिमाग में नहीं लाना है। और मुझे लगता है कि इस लाइन के तहत जो मैंने अभी वाक्य कहा है, अभी लॉकडाउन है, आप में एक अवसाद की स्थिति होगी, इससे आपको उभरना चाहिए और अपनी तैयारी में पूरी दृढ़ता के साथ जुट जाना चाहिए, और ऐसा करके आप अपनी मानसिक मजबूती की शुरुआत कर सकेंगे। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।